ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये परियोजनाओं से रोजगार के अनेक अवसर भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार देश में सुशासन का प्रतीक बन रही है। श्री मोदी राज्य में भजन लाल शर्मा सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर जयपुर में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत किफायती चिकित्सा पर्यटन के मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहा है और इस दिशा में देश के डॉक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति कल आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने डॉक्टरों को सलाह दी है कि वे सेवा भाव, निरंतर अध्ययन और अनुसंधान पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने सभी के लिए चिकित्सा सुविधाओं की भी पैरवी की। राज्यसभा में कल आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता सूची से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की अपील पर पूर्वांचल के क्षेत्रों के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। वहीं श्री सिंह ने आरोप लगाया कि प्रतिवाद करते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देखा जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल संसद भवन परिसर में आर्मेनिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष इलीन सिमोनियन के साथ विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में श्री बिरला ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और संसदीय सहयोग बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के नए मार्ग खुल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल आज होने वाली भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों एसआर की वार्ता में शामिल होने के लिए कल पेचिंग पहुंचे। इस वार्ता का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से अधिक समय से रुके हुए द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है। श्री डोभाल अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं दौर की वार्ता करेंगे। उम्मीद है कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के गश्त के 21 अक्टूबर के समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के समन्वय से राजकीय रेलवे पुलिस ग्रैप के प्रमुखों का 5वां अखिल भारतीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। रेलवे मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि सम्मेलन ने यात्री सुरक्षा अपराध कम करने की रणनीतियों तथा रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण जनशक्ति की आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों तथा सुरक्षा अधिकारियों को एक मंच प्रदान किया। गुजरात में भावनगर जिले में कल एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना त्रपज गांव के पास उस समय हुई जब एक निजी बस भावनगर में राजमार्ग पर एक डंपर ट्रक से टकरा गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। भारत नेपाल स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2024 कल काठमांडू में शुरू हो गया है। ये सम्मेलन दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाएगा। भारत नेपाल केंद्र पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सह अध्यक्ष कमलेश जैन ने कहा कि एक विकासशील देश के रूप में नेपाल को बेरोजगारी, विदेशी सहायता पर निर्भरता और व्यापार घाटे जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इन चुनौतियों से निपटने में आशा की किरण की तरह है। स्टार्टअप नौकरियां पैदा करता है, राजस्व उत्पन्न करता है और अर्थव्यवस्था में विविधता लाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।